तारापरी और अमन अपने पिछले जन्म में चले गए, जहां राधा के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए उसने राजा के पास जाने का फैसला किया। राधा जानती थी कि उसका पूरा गांव या आसपास के गांव एक हो जाएं, तो भी वे उस राजा का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और राधा, जो शुरू से ही गांव की औरतों की रक्षा करती आई थी, वो कैसे अपनी वजह से किसी औरत की जान या इज्जत खतरे में डाल सकती थी? और वैसे भी मोहन की मौत के बाद राधा की जिंदगी में अब कोई नहीं बचा था। उसके पिता ने एक शांत स्थान देखकर समाधि ले ली थी और साथ ही राधा को वरदान दिया था कि अगले जन्म में राधा और मोहन फिर से जन्म लेंगे और मिलकर उस दुष्ट राजा का अंत करेंगे। ऐसा कहकर वे समाधि ले लिए। राधा की माँ एक नज़र अपनी बेटी की ओर देखती है और कहती है, मेरी बच्ची, जब तक तू एक बार फिर जन्म लेकर मोहन के साथ मेरे पास नहीं आएगी, तब तक मेरी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर उन्होंने भी झरने के पास जल समाधि ले ली थी। अब राधा के पास अपनी जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तपस्वी महाराज ने मोहन की लाश को अपने कुछ आदमियों के साथ वहीं राधा मोहन के द्वारा बनाई गई मूर्ति के नीचे दफन कर दिया और वे खुद अपने उजड़े हुए गांव में जाकर एक खाली कमरे में समाधि ले लिए। तारापरी को जब परीलोक में थी, तब उसके मन में ये सवाल हमेशा आता था कि उस राक्षस के छूने के बाद भी वो फिर से कुंवारी क्यों हो जाती थी। उसे आज जाकर उसके कुंवारेपन का राज पता चला था। ये सब उसके पिछले जन्म के पिता तपस्वी महाराज के दिए वरदान से होता था, जिससे उस दुष्ट दानव के हर रात के छूने के बाद वो अगली सुबह फिर से कुंवारी हो जाती थी। आत्मा बने हुए तारापरी और अमन नम आँखों से एक ही पल में बिछड़ गए परिवार को देख रहे थे और सोचने लगे थे कि कहाँ यहाँ राधा मोहन की शादी के समय इतना हल्लागुल्ला मचा हुआ था और कहाँ अब मोहन समेत एक साथ चार लोगों की मौत हो गई थी। राधा की माँ ने गांव के ही झरने के पास जाकर जल समाधि ले ली थी और तपस्वी महाराज खाना पीना छोड़कर सूर्य और हवा का भोजन करने लगे थे। और मोहन तो पहले ही मर चुका था और राधा, वो तो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थी। राधा अपनी जान भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि उस दुष्ट का ये साफ साफ कहना था कि अगर राधा को कुछ हुआ या उसने अपनी जान ले ली, तो वो इस गांव की औरतों, मर्दों और बच्चों की जान ले लेगा। इसलिए राधा का पूरा परिवार अब मानो खत्म ही हो गया था। तारापरी सोच रही थी कि अब बचा ही कौन था उसके जीवन में। अब बस उसे उस राजा के पास जाना था और फिर उसके सामने अपना शरीर उसे सौंपना था, और उस राजा के मन भर जाने के बाद वो जो चाहे अपनी जिंदगी के साथ कर सकती थी। तारापरी और अमन एक दूसरे को देखकर सारी बातें सोच रहे थे। तभी उन्होंने अपने आप को उस खंडहर में पाया जहां मोहन की लाश उसके पिताजी ने दफन की थी। राधा अभी भी शादी के जोड़े में थी और उस समय रात का कोई पहर था जब वो मोहन की लाश जिस जगह दफन थी वहां बैठे हुए रो रही थी। उसे इतनी बुरी तरह से रोता हुआ देखकर तारा और अमन का दिल भी बुरी तरह से रो रहा था। क्यों मोहन, क्यों ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? तुम तो हमेशा कहते थे राधा सिर्फ मोहन की है, और आज राधा को बिना अपने साथ लिए तुम अकेले चले गए। क्यों मोहन, क्यों छोड़कर गए हो मुझे उस दुष्ट राजा के लिए जो हर रात मेरे इस शरीर को नोचेगा, जिस पर सिर्फ मेरे मोहन का हक है, उसे मेरा मोहन छुएगा? नहीं मोहन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम आ जाओ, लौट आओ मेरे पास, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। लौट आओ मोहन, लौट आओ। ऐसा कहकर राधा जो रोई थी, उसका रोना सुनकर उस खंडहर के आसपास की दीवारें भी रोने लगी थीं। और तभी एकाएक बिजली सी चमकने लगी और तभी अमन और तारापरी ने जो देखा, वो देखकर वे दोनों हैरान रह गए। मोहन की कब्र में से धुआं सा निकलने लगा था और मोहन की आत्मा बाहर आ गई थी। राधा मोहन को देखकर और रोने लगी थी, कहने लगी थी, मोहन मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। राधा, मैंने तुमसे कहा था ना, इस जन्म तो क्या, आगे जितने भी हमारे जन्म होंगे उसमें राधा और मोहन जरूर मिलेंगे और मिलकर इस दुष्ट राजा का, उस राक्षस का अंत करेंगे। राक्षस का अंत करने वाली बात मोहन ने तारापरी की आत्मा की ओर देखकर बोली थी। तारापरी ये देखकर हैरान रह गई थी और सोचने लगी थी कि क्या मोहन हमें देख सकता है। अमन के मन में भी यही सवाल था। तारापरी और अमन एक दूसरे से बात तो नहीं कर सकते थे, लेकिन एक दूसरे की आंखों ही आंखों में वे दोनों सारी बात समझ लेते थे। अगले जन्म वाली बात सुनकर तब राधा ने मोहन को देखकर कहा, नहीं मोहन, नहीं, कोई अगला पिछला जन्म नहीं होता है, मैं ये सब नहीं मानती हूँ। तुम तो कम से कम पिताजी की तरह बात मत करो, क्योंकि तपस्वी महाराज को अगले पिछले जन्म पर यकीन था, लेकिन राधा यकीन नहीं किया करती थी। उसे लगता था कि कोई पिछला अगला जन्म नहीं होते हैं। तारापरी राधा के मुंह से पिछले अगले जन्म के बारे में विचार सुनकर हैरान थी, क्योंकि ये विचार तो अभी भी उसके इस जन्म में भी है। राधा, शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारा भविष्य में जो अगला जन्म होगा, उसमें हम दोनों फिर एक होंगे और हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। राधा मोहन की बात सुनकर चुप हो गई और बोली, मोहन, मैं कल उस दुष्ट राजा के पास चली जाऊंगी और उसके खुद को छूने के बाद मैं अगले ही पल अपनी जान दे दूंगी और बहुत जल्द तुमसे आकर मिलूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा राधा। मैं जानता हूं तुम उस दुष्ट राजा को किसी भी कीमत पर अपना शरीर नहीं छूने दोगी, क्योंकि राधा के शरीर पर सिर्फ और सिर्फ मोहन का हक है। काश मैं एक परी होती जिसके पास कितनी सारी शक्तियां होती, और फिर तुम देखते कैसे मैं तुम्हें जिंदा कर देती और एक नहीं दो दो मोहन बना देती और मैं तुम दोनों के साथ रहती। राधा आंखें बंद करके न जाने किस भाववेश में ये बात कह गई थी। मोहन ने उसे देखा और बोला, राधा, मैं ऊपर जाकर भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि जो भी कुछ तुम चाहती हो वो पूरा हो जाए। ये सुनकर राधा ने अपनी आंखें खोल ली और बोली, नहीं मोहन, तुम कहीं मत जाओ, आत्मा बनकर ही मेरे साथ रहो, लेकिन मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ।
ये कैसी बातें कर रही हो राधा? भला मोहन भी कभी राधा से दूर हुआ है? जो मैं हूंगा, हमारे केवल शरीर नहीं आत्माएं भी मिली हुई हैं राधा। और शरीर को जलाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन आत्मा, आत्मा तो अजर है, अमर है, जिसे न जलाया जा सकता है न दफनाया जा सकता है। मेरा शरीर नहीं है तो क्या हुआ? मेरी रूह तो है जो तुम में जिंदा है। ध्यान से देखो राधा, मैं तुम में जिंदा हूँ। राधा, मैं जिंदा हूँ। ऐसा कहकर मोहन अंतर्ध्यान हो गया था और राधा एक बार फिर से रोने लगी थी। और जल्द ही अब सुबह होने वाली थी। राधा ने एक नज़र अपनी और मोहन की मूर्ति की ओर देखा और फिर मोहन की कब्र की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने पल्लू में बांध ली और फिर राजा विक्रम सिंह के राज्य की ओर चल पड़ी थी। राधा का सफर अब शुरू हो चुका था। राधा के उस खंडहर से निकलने के बाद तारापरी और अमन की आत्मा वहीं रह गई थी और वे दोनों बुझे मन से राधा को जाते हुए देखने लगे थे। लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने आप को एक और गांव में पाया जो राधा का गांव तो नहीं था। उन दोनों ने देखा कितनी सारी औरतें मर्द उस गांव में अपने अपने घरों के बाहर खड़े हुए एक ओर देख रहे थे। तारापरी और अमन भी उसी ओर देखने लगे तो वे दोनों हैरान रह गए, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि राधा ही थी, जो नंगे पांव शादी के उसी जोड़े में जो लाल से अब फीका पड़ चुका था, उसी जोड़े में बदहवासी हालत में उस गांव से गुजरती हुई उस दुष्ट राजा के राज्य की ओर चली जा रही थी।
तारापरी और अमन राधा की ऐसी हालत देखकर बेहद दुखी हो गए थे और तारापरी तो सोचने लगी थी, इस जन्म में वो राक्षस मुझे दुख दे रहा था, लेकिन यहाँ इस जन्म में ये राजा मुझे दुख दे रहा था। तारापरी मान चुकी थी कि ये राधा कोई और नहीं बल्कि तारापरी का ही पिछले जन्म का रूप है, और वो ये भी जान गई थी कि अमन और मान क्यों मिले हैं उसे इस जन्म में। वे दोनों इसलिए मिले हैं क्योंकि ये राधा की पिछले जन्म की इच्छा थी कि उसे दो मोहन मिले, जो इस जन्म में अमन और मान के रूप में पूरी हुई थी। तभी अमन और तारा ने अपने आप को एक बड़े से दरबार में पाया जहाँ राजा विक्रम सिंह बैठा हुआ था और अपने सैनिकों को हुक्म दे रहा था, कहाँ है राधा, ढूंढ कर लाओ, उसे हमें राधा चाहिए, वो भी बिल्कुल सही सलामत राधा चाहिए, मुझे, मुझे राधा चाहिए। विक्रम ने अनगिनत बार यही बात बोली थी, जिसे सुनकर उसके सभी दरबार एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे।